मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 26 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सबके लिए एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि YouTube पर अभी एक दो दिन पहले एक प्रोग्राम मैंने डाला है, AFA ने डाला है और वह इंटरव्यू की तैयारी के ऊपर है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। हालांकि आप कह सकते हैं कि सर अभी तो हम प्री की ही तैयारी में लगे हुए हैं और आप हमें इंटरव्यू की सूचना दे रहे हैं, मित्रों वो ये कह लीजिए कि निरुद्देश्य सूचना नहीं है। जब आप उसे सुनेंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि इसकी पूर्व सूचना आपको क्यों दी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि प्री एग्जाम की तैयारी का प्रश्न हो या फिर मेंस का हो वो तो आप एक कमरे में एकाध साल बंद होकर के शायद कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी ऐसे नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसकी तैयारी आपको अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। फिर प्री और मेंस की आप करते रहिए जो कि उसका संबंध आपके व्यक्तित्व के विकास से है। तो मित्रों मैं चाहूंगा कि आप सब जो इसके प्रति थोड़ी सी भी जिज्ञासा रखते हैं, रुचि रखते हैं, वे चाहें तो YouTube पर यह प्रोग्राम सुन सकते हैं। फ्रेंड्स अब मुख्य विषय की सूचना यह है कि एक रिपोर्ट आई है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक दो जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। जो अपेक्षाकृत कह लीजिए कि महत्वपूर्ण खबर है मित्रों वह तो यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं और दक्षिण अफ्रीका में वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए इसके जो पांच शब्द हैं उसी से ही आप मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन कौन देश इसके मेंबर होंगे। बी फॉर ब्राजील है ना, ब्राजील लैटिन अमरीकी देश है। आर फॉर रूस, यूरोप का देश है। आई जहां आप और हम हैं, इंडिया। फिर है सी यानी कि चाइना, और इसके बाद है एस यानी कि वो जगह जहां अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मेलन के लिए गए हैं, साउथ अफ्रीका। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि शुरू के जो चार शब्द हैं BRIC ये शुरुआत में इसके मेंबर थे, साउथ अफ्रीका को बाद में इसका मेंबर बनाया गया, यानी कि शुरू में सिर्फ ब्रिक था, साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद ये हो गया है ब्रिक्स। और एक मुझे लगता है प्री के लिहाज से आपको थोड़ा सा जानना महत्वपूर्ण हो सकता है कि इंडोनेशिया ने भी अप्लाई किया हुआ है कि मुझे भी इसका सदस्य बनाया जाए, देखिए कि उसके बारे में क्या होता है। और अगर इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो जाता है तो हो जाएगा BRII, इंडोनेशिया है ना, BRII ब्रिक्स। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन धीरे 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 होता जा रहा है, बहुत शक्तिशाली। अब आप देखिए कि तीन तो बहुत बड़ी आबादी वाले देश इसमें शामिल हैं, भारत, अब चाइना और रशिया। चाइना और रशिया उस तरह से दूसरी दृष्टि से भी शक्तिशाली है, भारत भी धीरे धीरे तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन तीनों की आर्थिक स्थिति के बारे में आप जानते हैं। ब्राजील लैटिन अमरीकी देशों में बहुत ही प्रमुखता के साथ उभर रहा है और लगभग अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका की भी यही स्थिति है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दिन पर दिन ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है। अभी सम्मेलन में क्या निर्णय लिए जाते हैं इसके बारे में जब खबरें आएंगी तब अगर कोई महत्वपूर्ण बात हुई फ्रेंड्स तो हम लोग उस समय फिर बातें करेंगे। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कह लीजिए कि आपने न्यूज में सुना कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पारित कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने शुरू में की थी। देखिए कि किस तरह से जो ब्लैक मनी है उसके खिलाफ लगातार सरकार कदम उठा रही है। हालांकि देखिए इसका संबंध उस तरह से ब्लैक मनी से नहीं है लेकिन यूं कह लीजिए कि आर्थिक अपराधों से है, क्योंकि भगोड़ा तो यह है ना कि बैंकों से पैसा लिया या जो कुछ भी उसने कारनामे किए और इसके बाद वो विदेश भाग गया, जैसे अभी बहुत सी घटनाएं आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं था कि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे वापस लाया जा सके, या कह लीजिए कि उसकी यहां जो भारत में संपत्ति उसे जब्त किया जा सके, इस तरह के कानून नहीं थे। अब यह कानून बना है कि जब वह भाग जाएगा तो बकायदे सरकार उसकी जो संपत्ति है वह जब्त कर सकेगी, और इसके अधिकार दिए हैं प्रवर्तन निदेशालय को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसको कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय उस आरोपी की संपत्ति को जब्त कर सकेगा। और दूसरी जो बड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे नोटिस जारी हो गया कि भाई आइए और अदालत के सामने पेश होइए, तो 6 सप्ताह के भीतर उसे अदालत में आना पड़ेगा, और अगर अदालत में नहीं आया तो सीधी सी बात है कि उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। देखिए अभी जो भाग करके गए हुए हैं लगातार उनके लिए नोटिस जारी हो रही है और वो अदालत के सामने आ भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा कानून नहीं है। तो अब संपत्ति को जब्त करने का अधिकार सरकार के पास होगा। तो ये बहुत ही मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण कानून इस दृष्टि से बना है। और भ्रष्टाचार, वो तो आपने इससे पहले जो भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम था वो तो कल उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो आप इन दोनों को काफी कुछ आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, क्या नए कदम उठाए गए हैं, उसमें इन दोनों को मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है और इसका जो एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा और जो उद्देश्य के तहत हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा भी है वो ये कि जो लोग भाग जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगे कार्यवाही से, इसलिए भाग जाते हैं। तो जब उनको लगेगा कि नहीं बचाव का कोई रास्ता ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि फिर वो भागने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो इस तरीके से जो मुख्य उद्देश्य है इनको भागने से रोकना है कि ये भागे ना, और भाग भी जाएंगे तो मजबूरी है कि उनको अपने लौट कराना पड़ेगा। तो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कानून है और इसके लिए फ्रेंड्स अलग से अदालत भी होंगी, बकायदे अदालत में ही कानून मतलब मुकदमा चलेगा और अदालत ही ये घोषित करेगी कि ये व्यक्ति भगोड़ा माना जाए या भगोड़ा न माना जाए, और वही फिर संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी देगी। मतलब सारी चीजें बकायदे न्यायिक प्रक्रिया के तहत होंगी और जो लिमिट रखी गई है वो है 100 करोड़ और उससे अधिक, 100 करोड़ और उससे अधिक। आप सोच सकते हैं कि 100 करोड़ से कम वालों के लिए क्यों नहीं है, तो उसमें वित्त मंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में साफ साफ कहा है कि जो 100 करोड़ से कम वाले जो लोग होंगे बकायदे उनके लिए दूसरे कानून हैं, उन कानूनों के तहत उन पर कार्यवाही की जाएगी। 100 करोड़ एंड अबव इसलिए रखा गया है ताकि न्यायालयों पर बहुत ज्यादा बोझ न आए और काम अच्छे से किया जा सके। अब आगे की बात है, अगर उसकी भी जरूरत महसूस हुई तो फिर आगे सरकार उसके बारे में सोचेगी, लेट अस सी, देखते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है ना, और इस रिपोर्ट में पुलिस के बारे में कुछ बातें बताई कही गई हैं। ये विषय मैंने क्यों चुना है पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, यानी कि कोई भी रिपोर्ट आएगी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। देखिए जब भी हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, सिविल सर्विसेज, तो दो पार्ट उसके होते हैं, एक तो सिविलियंस यानी कि प्रशासन में एज ए होल क्या सुधार किया जाए, और दूसरा होता है पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार की जाए। हालांकि ये भी सिविलियन का ही पार्ट है, मतलब ये कोई अलग नहीं है, लेकिन पुलिस व्यवस्था में जो सुधार की बात होती है वो ये कह लीजिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की बात है उससे थोड़ी सी अलग होती है। आपने गौर भी किया होगा कि मैं अक्सर जब पुलिस सुधार पर कोई आर्टिकल आता है या एडिटोरियल कमेंट आते हैं तो वो आप लोगों को प्रोवाइड भी करता हूं, ताकि पुलिस सुधार के बारे में आपको कुछ चीजें जो लेटेस्ट हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, वो मालूम हो। साथ ही साथ दूसरी बात और भी है कि जब आप अपनी सर्विस में प्रेफरेंस देते हैं कि आप किस सर्विस में जाना चाहेंगे, तो आईएएस के बाद आप सेकेंड प्रेफरेंस जो भी देते हो, आजकल रेवेन्यू सर्विस के लोग ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं, आईपीएस भी देते हैं, और वो जो बायोडाटा है वो बकायदे इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका होता है कि आपने किन सर्विसेज के प्रेफरेंस दिए हैं। तो उसमें आईपीएस अगर उनको दिखा तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो आपसे पूछें कि क्या सुधार किए जाने चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो दोस्तों मैं जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं जो अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं केवल वे आपके सामने रख रहा हूं, केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स, हालांकि उसमें तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी फ्रेंड्स, वो ये है कि हमारे यहां जो पुलिस संख्या है, पुलिस बल है, वो काफी कम है। काफी कम इस मायने में कि एक बल्कि आपको इसे नोट भी कर लेना चाहिए कि जो यूएनओ है उस अलग अलग चीजों के बारे में वो मापदंड देता रहता है। यूएनओ का ये मामला है कि ये मानना है कि 454 यानी कि 454 लोगों के पीछे एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। 454 ये आंकड़ा ऐसा है जो आपको याद रहना चाहिए, नोट कर लीजिए, जब भी दोहराते रहेंगे तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपका दिमाग क्लिक करके आपको प्रोवाइड कर देगा। 454 लेकिन हमारे यहां जो है वो है 663। अब आप देखिए कि चूंकि पुलिस संख्या कम है तो मतलब ये आप मान सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इससे फिर व्यवस्था, कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि देखिए कि एक बात और भी है कि अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप, हम सीधे सीधे ये भी नहीं कह सकते कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करनी है तो पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए तो उससे बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो जहां बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, सोचिए वहां जो अनुपात है वो है 436। अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं, 436। तो अब आप देखिए कि 454 यूएनओ का है और इनका 436 है, मतलब उससे भी ये बेहतर अनुपात दे रहे हैं और हम 663 में हैं। दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट जैसी मुझे लगी वो ये है कि हमारे पुलिस जो बल की जो टोटल अप्रूव्ड संख्या है उससे लगभग 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 कह लीजिए 19 मतलब टोटल तो हमारे यहां 19 लाख पुलिसकर्मी है, 19 लाख, और उसमें अंदाजन आप कह लीजिए कि 5 लाख, 5.5 लाख, 5,42,000 का मतलब 5.5 लाख, 5.5 लाख से के आसपास पद खाली पड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अप्रूव्ड पोस्ट नहीं है, पद हैं, 5.5 लाख खाली पड़े हैं। युवा हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं लेकिन वो भरे नहीं गए हैं, और टोटल संख्या है अभी जो है वो 19 लाख। तो अब आप सोचिए कि 19 लाख है, यानी कि टोटल आप समझ लीजिए मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि 25 लाख में से केवल 19 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो वहां भी हम बहुत लैग करते हैं, बहुत कम है। चलिए 19 लाख काम कर रहे हैं। इसमें भी जो एक रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि जो वीआईपी हैं, एक वीआईपी के पीछे 3.5 पुलिसकर्मी, तीन मान लीजिए, एक वीआईपी की देखरेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मी हैं, और जब हम पब्लिक में जाते हैं तो 663 लोगों को देखने के लिए 1 पुलिसकर्मी है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें से भी एक ढेर बहुत बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की वो है जो वीआईपी के कामों में लगी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है फ्रेंड्स कि चूंकि पुलिस की संख्या कम है तो जो काम करने के घंटे हैं पुलिसकर्मियों की वो 11-11 घंटे औसतन हो रहे हैं, 11-11 घंटे उन्हें काम करना पड़ रहा है। जो हमारे स्टेशन है, जो पुलिस स्टेशन है, 15,555 पुलिस स्टेशन है, ये भी बल्कि आप कहीं नोट कर लेंगे तो काम आ सकता है, बहुत अच्छा आंकड़ा 15,515 पुलिस स्टेशन, और इसमें कुछ पुलिस स्टेशन तो ऐसे हैं जहां कोई गाड़ी ही नहीं है। सोचिए पुलिस के पास गाड़ी ना हो, आप कल्पना करके देखिए, यहां तक कि टेलीफोन तक नहीं है। तो ये एक तरह से प्रशासन की उस लापरवाही को दिखाता है कि वो इन चीजों को कितने कैजुअली ले रही है। तो मित्रों कुछ मैंने महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिए हैं, और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं, अगर आपका और आपकी इसमें रुचि हो तो। फ्रेंड्स मैं आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आज उनकी संख्या अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज्यादा है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दो दोस्तों के नाम है, प्रकृति कुलश्रेष्ठ और के बी मीना, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।